हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। अनाए, अनाए, मनस्वी ने अपनी जगह पर उठकर बैठते हुए धीमी आवाज में उसका नाम लेकर कहा। मनस्वी को अच्छी तरह पता था कि अनाए को उसकी आवाज सुनाई दे रही है और उसने सुना भी था कि मनस्वी उसे बुला रही है। फिर भी उसने उसे इस तरह रिजेक्ट किया जैसे कुछ सुनाई ही न दिया हो। अनय चुपचाप रेडी होने में लगा रहा मनस्वी को पूरी तरह नज़रअंदाज करते हुए। उसके इस अनदेखी पर मनस्वी ने फिर उसे आवाज़ नहीं दी। उसने मन ही मन कहा, बेवजह का एटीट्यूड दिखा रहा है, बात करने और सॉरी बोलने के लिए बुला रही थी, जाने के लिए इस तरह दिखावा कर रहा है जैसे मेरी आवाज़ सुनाई ही न दी हो। कोई बात नहीं, भाड़ में जाए, मुझे क्या फ़र्क पड़ता है। इतना कहकर मनस्वी ने एकाएक कंबल अपने ऊपर से हटाया, बेड से उठी और पैर पटकते हुए वॉशरूम की ओर बढ़ गई। ये सब उसने अपना गुस्सा और फ्रस्ट्रेशन दिखाने के लिए किया था। उसने वॉशरूम का दरवाज़ा भी जोर से पटक कर बंद कर दिया। इससे अनय ने एक बार पीछे मुड़कर देखा और फिर बेबसी से सिर हिलाते हुए अपना कोट पहनने लगा। पूरा तैयार होकर अनय तुरंत कमरे से बाहर निकल गया। अपनी रिस्ट वॉच पहनते हुए उसने मनस्वी से बात न करने का मन बना लिया था। वो उसे जानबूझकर नज़रअंदाज कर रहा था क्योंकि वो नहीं चाहता था कि पिछली रात की तरह फिर से उनके बीच कोई बहस हो। अपने कमरे से निकलकर अनय सीधा सीढ़ियां उतरकर नीचे आया। मेट ने पहले ही नाश्ता तैयार कर रखा था। काम पर निकलने से पहले अनय डाइनिंग एरिया में गया और एक कुर्सी पर बैठकर नाश्ता करने लगा। मेड नाश्ता परोस रही थी, उसी दौरान अनय ने अपना मोबाइल फ़ोन निकालकर उसे स्क्रॉल करना शुरू कर दिया। तभी उसने मेड की ओर देखकर पूछा, मम्मी ने नाश्ता कर लिया? मेड ने जवाब दिया, नहीं सर, वो आज अभी तक अपने कमरे से बाहर नहीं आई हैं। रोज इस वक्त तक नाश्ते के लिए आ जाती थीं और कभी कभी तो इससे भी जल्दी। मेड की बात सुनकर अनय ने तुरंत कहा, अरे ये तो सामान्य नहीं है, किसी ने जाकर चेक किया या नहीं? रहने दो, मैं खुद ही देख कर आता हूँ। इतना कहकर अनय बिना नाश्ता किए ही डाइनिंग टेबल से उठा और अपनी सास के कमरे की ओर बढ़ गया। अनय कमरे के बाहर पहुंचकर दरवाज़ा खटखटाया। अंदर से उसकी सास की आवाज़ आई, दरवाज़ा खुला हुआ है। ये सुनकर अनय ने दरवाजे को हल्का सा धक्का दिया। डोर लॉक नहीं था इसलिए दरवाज़ा आसानी से खुल गया। अनय अंदर आते हुए बोला, मम्मी आप जाग गई हैं तो फिर आप अभी तक नाश्ते के लिए बाहर क्यों नहीं आईं? आपकी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ हाँ बेटा, तबीयत ठीक है, ऐसा कुछ नहीं हुआ, बस थोड़ी कमजोरी लग रही है, इसलिए बिस्तर से उठने का मन नहीं हो रहा और ना ही कुछ खाने पीने का, लेकिन ये कोई नई बात नहीं है, ऐसा तो अक्सर होता है। उसकी सांस ने मुस्कुराते हुए कहा, जैसे ये कोई बड़ी बात नहीं है। उनकी बात सुनकर अनय उनके लिए परेशान होते हुए बोला, अरे इतना सब कुछ और फिर भी कह रही हैं, चलिए मैं अभी आपको हॉस्पिटल लेकर चलता हूँ, वहाँ पर डॉक्टर से मेरी अच्छी जान पहचान है, वो आपका ठीक तरह से चेकअप करेंगे और फिर आपका इलाज भी होगा। चलिए, अपने हाथ को लेकर बिल्कुल भी लापरवाही नहीं करनी चाहिए मम्मी। अरे बेटा मैं ठीक हूँ, तुम्हें इतनी फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है और तुम वैसे भी तैयार होकर अपने काम से ही जा रहे होगे ना, कहाँ मुझे हॉस्पिटल लेकर जाओगे, फिर तुम्हारे काम का भी नुकसान होगा। अनय की सास ने उठकर बैठते हुए कहा। उनके चेहरे पर अभी भी हल्की सी मुस्कान थी जिसके नीचे वो अपने दर्द और तकलीफें छिपाने की कोशिश कर रही थीं। नहीं, मेरा जो भी काम है मैं वो बाद में देख लूँगा, अभी आपकी हालत ज़्यादा ज़रूरी है, इसलिए चलिए साथ में नाश्ता करिए और फिर हम अभी हॉस्पिटल के लिए निकल रहे हैं, अनय ने एकदम से ज़िद करते हुए कहा। लेकिन बेटा तुम क्यों? अनय की सास ने कहा, मगर अनय ने उनकी बात बीच में ही काट दी। अच्छा, बेटा भी बोलती है और बेटे की बात भी नहीं मान रही, मुझे कोई भी बहाना नहीं सुनना है, चलो जल्दी से नाश्ते के लिए आइए, तब तक मैं कॉल करके डॉक्टर से अपॉइंटमेंट ले लेता हूँ। इतना कहकर अनय उनकी कोई बात सुने बिना ही कमरे से बाहर चला गया। उसके जाने के बाद मनस्वी की माँ मुस्कुराते हुए अपने मन में सोचने लगी, मेरा अपना बेटा भी कभी मेरी इतनी फ़िक्र नहीं करता, मैं जब से यहाँ पर आई हूँ एक बार भी फ़ोन करके मेरे बारे में नहीं पूछा, और एक तरफ ये लड़का है जो दामाद होकर भी बेटे का फ़र्ज निभा रहा है। इतनी किस्मत वाली है मेरी बेटी जो उसे ऐसा पति मिला, बस ये दोनों इसी तरह साथ रहें और इनके रिश्ते में कोई भी परेशानी ना आए। आउटडोर शूटिंग लोकेशन। विवान कपूर से थोड़ी देर बातचीत करके नैना को काफ़ी अच्छा लगा और वो उनके साथ सहज हो गई, लेकिन बातचीत के दौरान नैना ने नोटिस किया कि विवान कपूर बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल हैं और एक्टर्स के साथ साथ बाकी लोगों से भी बहुत कम और सिर्फ काम की बातचीत ही करता है। नैना को इस बात से कोई समस्या नहीं थी उल्टा उसने सोचा कि ये उसके लिए अच्छा ही है। अगर विवान सिर्फ अपने काम से मतलब रखता है तो वो किसी भी तरह के स्कैंडल या अफवाहों में नहीं फंसेगी और उसके लिए काम और फिल्म की शूटिंग करना भी आसान हो जाएगा। तभी उन्हें पता चला कि उनके शूट में अभी काफी समय है। नैना ने सोचा कि तब तक वो कुछ खाने के लिए ढूंढ लेती है। उसे लगा कि आसपास कुछ खाने पीने की दुकान या कुछ तो मिल ही जाएगा, नहीं तो वो स्टाफ मेंबर से पूछ लेगी। लगभग दोपहर होने वाली थी और नैना ने नाश्ता भी नहीं किया था, इसलिए उसे भूख लग रही थी। ये सोचकर वो वहाँ से उठी। उसके डायलॉग अब तक अच्छी तरह याद हो गए थे क्योंकि वो कल से लेकर अब तक अपनी स्क्रिप्ट कई बार कढ़ चुकी थी। उसने विवान के साथ कपल डायलॉग्स भी रिहर्सल कर लिए थे, इसलिए अब वो सेटिंग को लेकर बिल्कुल भी घबराई हुई नहीं थी। वो उस जगह से थोड़ा आगे बढ़ी और क्रू मेंबर से कुछ खाने के बारे में पूछने लगी। एक लड़की ने बताया कि उनके पास कुछ सैंडविच हैं, उनमें से एक वो नैना के लिए ले आने को बोली। उसकी बात सुनकर नैना खुश हो गई और वो स्टाफ मेंबर सैंडविच लेने के लिए चली गई। नैना को वहीं रुकने के लिए कहा गया और नैना वहां रुककर उसका इंतजार करने लगी। इस वक्त नैना के पास उसका मोबाइल फोन भी नहीं था क्योंकि उस एरिया में नेटवर्क नहीं था और वहां मोबाइल फोन अलाउ भी नहीं था। डायरेक्टर ने ऐसा इसलिए किया था क्योंकि इससे शूटिंग में व्यवधान होता है, इसलिए सभी एक्टर एक्ट्रेस के मोबाइल एक जगह पर इकट्ठे करके रख दिए गए थे। चूंकि सभी इस बात के लिए राजी थे, इसलिए नैना भी कोई आपत्ति नहीं कर पाई और उसने भी अपना मोबाइल फोन दे दिया था। इसलिए इस वक्त उस लड़की के आने का इंतजार करते हुए नैना बोर हो रही थी। खड़ी खड़ी बोरियत के कारण वो इधर उधर देख रही थी और अपना पैर भी हिला रही थी। हेलो मिस नैना, एनी प्रॉब्लम? पीछे से किसी अनजान आदमी की आवाज आई। नैना ने मुड़कर उसकी ओर देखा।